दौला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं अन्ताय मज्जहीनं दशदशयचावधीरं पडमजिनम् वोक्षं न मिऊनन्तरम् अनन्तरुत्तुङ्गसन्नमै दुर्गेशम्। आचार्य श्री भीमसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड है जीवस्थान नामक, और उसमें अपना प्रकरण है अंतरानुगम का। पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 171 पर हम आ गए, 171। अभी तो अपने सम्यक मार्गणा तक की बात अपनी हुई थी, अब संगी मार्गणा की बात चलेगी। तो संगियों में तो सारे एक से कितने गुण स्थान हो गए,
संगी से रही होगा, सॉरी
एक से बारह कहेंगे, क्योंकि 13वें 14वें केवल ज्ञानी उनको संगी मार्गणे की अपेक्षा संगी नहीं कहेंगे। जब जीव समाज में हम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के पर्याप्त पर्याप्त भेद करते हैं, उसमें तो उनको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, यहाँ उनको नहीं कहेंगे। सन्नी अनुवादेन सन्नीसु मिच्छा दिष्ठिनम ओघम, संगी मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओह के समान है। क्योंकि अंतर कब होगा, जब सम्यक तो प्राप्त करेंगे, तो सम्यक तो प्राप्त होगा, जब तक सम्यक तो में रहेंगे, मिथ्या तो में आएंगे तो संगी बने रहेंगे। इसलिए जो ओह में मिथ्या तो का अंतर है वो यहाँ पर भी बनेगा। कितना था,
कुछ कम दो छा सकता। अंतर्भूत भी होता,
अंतर्भूत का। अब नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर नहीं कहेंगे, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम दो 66 सागरोपम मात्र अंतरों की अपेक्षा ओघ से समानता पाई जाती है। अब 380 सूत्र शासन सम्मा दिखी पौड़ी जाव उसंत कसाय वीदराग छदुमत्थाती पुरुष वेद भंगो। पुरुष वेद भंग इसलिए कहा, क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा, पुरुष वेद का भंग क्यों कहा? बहुत अच्छा, आप पुरुष वेद की जो स्थिति है और ये संगी की, वो वही सेम है, इसलिए उसके समान बताए। देखो यहाँ पढ़ेंगे नीचे, सासादन समय दृष्टि से लेकर उपशान कषाय वितराग छद्मस्थ तक संगी जीवों का अंतर पुरुष वेदियों के अंतर के समान है। ये केवल स्थिति बताने के लिए, आप कहेंगे पुरुष वेदी तो 9वें गुणस्थान तक है और यहाँ तो उपशान कषाय तक की बात की, समझ में आई ना? तो उसकी स्थिति उतनी है, काय स्थिति इतनी बात लेनी है बस। क्योंकि सागरोपम शत पृथक्त्व स्थिति की अपेक्षा दोनों के अंतरों में समानता पाई जाती है। विशेषता यह है कि असंगी जीवों की स्थिति में रहकर संगी जीवों में उत्पन्न हुए जीव के उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए। जो असंगी में उत्कृष्ट स्थिति तक रहा है ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन
नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन,
मैंने क्या कहा?
अर्ध
कहा, अर्ध नहीं, अनंत काल,
असंख्यात
पुद्गल, या उन्होंने कहीं कहीं असंख्यात असंख्यात लोग भी कहा है, एक इंद्रियों के लिए भी, यानी इतना लंबा काल रहेंगे तो ही यहाँ उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। चतुर्णम खवानम ओघम, संगी चारों क्षपकों का अंतर ओघ के समान है, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि क्षपक सारे संगी हो गए और उसमें नाना जीवन की अपेक्षा एक समय का अंतर जघन्य, उत्कृष्ट छह महीने, और अंतर्मूर्त किसका होगा?
नहीं, एक जीव की अपेक्षा,
एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। असन्निनम अंतरम केवचिरम कालाद होदी नाना जीवम पड़ुच्छन अत्य अंतरम निरंतरम, असंगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। जब असंगी जीवों का कहा, क्योंकि असंगियों में एकमात्र मिथ्या तो गुणस्थान ही है और उसका अंतर होने का सवाल नहीं, इसलिए हम मार्गणा का ही अंतर कहेंगे।
ये संगी चारों का अंतर ओके सवाल है, संगी में क्या लेना?
ओके समान है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर छह महीने, वो नाना जीवों के होगा, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। असंगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि असंगी जीवों के प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता है। एक जीवम पड़ुच्छन अत्यंतरम निरंतरम, असंगी जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि असंगियों में गुणस्थान के परिवर्तन का अभाव है। जिसे संगियों में एक गुणस्थान से अन्य गुणस्थान से जाकर वापस लौटता है तो एक जीव की अपेक्षा अंतर होता है, वैसे यहाँ घटित नहीं होगा। इस प्रकार संगी मार्गणा समाप्त हुई। नीचे फुटनोट में सारे सर्वासिद्धि के वही रेफरेंस ये जो है यहाँ कथन है वही वहां पर है, 173 पृष्ठ। अभी आहार मार्गणा की बात चलेगी। आहार मार्गणा का अर्थ समझते हो मनीषा बेन? नहीं समझते। देखो, आहार मार्गणा यानी वो जीव आहारक है कि अनाहारक, तो आहारक कब कहेंगे और अनाहारक कब कहेंगे प्रेरणा बेन?
विग्रह गति में अनाहारक।
देखो देखो, आहारक का अर्थ क्या है? शरीर के परमाणु का ग्रहण करना, उसको आहारक कहेंगे। तो शरीर के परमाणु का जन्म के पहले समय से लेकर मरण तक तो शरीर के परमाणु का ग्रहण होता है,
कार्बन
का। तो शरीर के परमाणु का ग्रहण कब नहीं होता है? मोड़ वाली विग्रह गति से जाएगा तो नहीं होता, सीधे जाने वाले का उसका भी ग्रहण होता रहता है। तो कार्मान का युग जहाँ है वहाँ अनाहारक है, और कहाँ अनाहारक है? अयोग के युगी में, जो योग ही नहीं है, ना कर्म का ग्रहण है ना शरीर के परमाणु का ग्रहण है, जिसको हम नो कर्म का ग्रहण कहते हैं। तो आहारक और अनाहारक शरीर के परमाणुओं के ग्रहण की अपेक्षा बताया जाता है। संयोग केवली भी आहारक है, अयोगी केवली है वो अनाहारक है। तीन समय के कारमान का योग होता है समुद्घात में, केवली समुद्घात में, प्रतर लोक पूरण और फिर प्रतर, तीन समय तक कार्मण का योग है, और वहां पर भी जीव अनाहारक है, शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं है। ये समझ में आई? तो आहारकों के अभी गुणस्थान कितने हो गए? एक से तेरह, बहुत अच्छा। और अनाहारकों के गुणस्थान आप ही को कहेंगे। जिन जिन गुणस्थानों में जीव मरकर जा सकता है कारमान का योग के साथ, यानी उसी गुणस्थान से अन्य भाव में जा सकता है ना। हाँ, कौन से गुणस्थान हो गए ऐसे? मयंक भाई आपके, हाँ, पहला, दूसरा, चौथा, ये मरण की अपेक्षा, यानी कर्मण का योग, मरण क्या, यानी विग्रह गति वाला, तेरहवे वाला समुद्रात में, ख्याल में है ना, अनाहरक है। तो अनाहरक के गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, तेरवा और पूरा चौदवा पूर्ण, क्योंकि चौदवे में तो योगी नहीं है। यहाँ तक बात ख्याल में है? हाँ, उपवास करता है तो आहारक है कि अनाहरक है? बहुत अच्छा, आहार सोचना ऐसा, क्योंकि शरीर के परमाणु का ग्रहण हो तो चल ही रहा है वहां से। चौथा, तेरा और चौदह आहारक के, ऐसा नहीं, अरे मिथ्या दृष्टि आहारक होगा ना थ्रू आउट लाइफ टाइम, तो वो बाकी के आहारक के ऐसा नहीं लेना। आहारक के तो सभी, तेरहवे तक के सभी। आहारक के गुणस्थान कौन से है? पहले से तेरह तक सारे ही सारे, ख्याल में आएगा? वो अनाहारक के केवल, और वो गुणस्थान है हमेशा नहीं, विग्रह गति में। अभी हम
कोई मुनिराज है और उनका सात्विक गुणस्थान में मरण होता है तो देवगति में जाएंगे विग्रह गति के साथ, तो उनको चौथा ही गुणस्थान रहेगा और वो आहारक ही अनाहारक ही कहलाएगा विग्रह गति में, क्योंकि एक समय से अधिक समय वो भी। और वैसे दूसरे गुणस्थान में भी ऐसा ही होगा, और तेरहवें में तो अभी आपको बताया, यानी ऐसा नहीं लेना कि इतने आहारक है तो बाकी अनाहारक है, ऐसा डिविजन नहीं लेना था। वो विग्रह गति में शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं करता है, इसी को अनाहारक कहा है।
और जो सीधी गति से जाता है ना, रुजु गति, बिना मोड़ वाली विग्रह गति, तो उसको आहारक यहाँ पर भी था और वहां पर भी डायरेक्ट आहारक हो गया, बीच में अनाहारक नहीं हुआ। अनाहारक तभी होगा जब मोड़ वाला होगा। तो हमने अभी देखा आहार मार्गणा की बात, ब्रह्मा आहारक और अनाहारक मालूम है क्या है? हाँ। तो आहारक के गुणस्थान एक से तेरह, बहुत अच्छा। और अनाहारक के गुणस्थान पहला, चौथा, दूसरा, हाँ, और तेरहवें गुणस्थान में संयोग केवली और चौदवा वाला, वो तो पूरा। अभी हम यहाँ पढ़ने शुरू कर रहे 173 पृष्ठ पर, 173 आहार मार्गणा के अनुवाद से आहार जीवों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है। मिथ्या दृष्टियों का अंतर, यानी ऊपर क्या पढ़ा था ना, आहार अनुवादे न आहार ये से मिथ्या दृष्टिन मोघम, यह सूत्र सुगम है। यानी नाना जीवों की अपेक्षा कितना अंतर पड़ेगा? अंतर नहीं है, मिथ्या तो गुणस्थान हमेशा होगा। एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जघन्य अंतर कितना होगा?
अंतर्मूर्त
मिथ्या दृष्टि। अभी हमारी क्राइटेरिया क्या है? आहारक रखना है। तो मिथ्या तो गुणस्थान से चौथे में गया और वापस आया, या अन्य किसी गुणस्थान में जाके आया, तो उसका लघु जो अंतर्मूर्त है वो उसका अंतर होगा एक जीव की अपेक्षा। अब उत्कृष्ट अंतर कैसे घटित करेंगे? आप क्या कहते हैं?
कुछ कम दो छात्र,
कुछ कम
दो छात्र।
देखो देखो क्या करना है, आहारक का आहारक रखना है। हमने ये बात बताई कि जो सीधी गति से जाता है रुजु गति से, वो आहारक का आहारक ही रहेगा। तो यहाँ हमने देखा था ओघ में अंतर कितना हो सकता है, दो छात्र सागर कुछ कम, यानी पहले छात्र सागर में अंतर्मूर्त कम था तो तीसरे में आया, फिर दोबारा चौथे में गया और एक छात्र सागर में अंतर्मूर्त बाद के रहा था, मिथ्यात्व में आया, तो मिथ्यात्व का अंतर दो छात्र सागर माइनस एक अंतर्मूर्त, क्योंकि उस मिथ्यात्व में नहीं आया था तब तक, तो तो क्या इतने काल तक कोई आहारक का आहारक रह सकता है? आहारक से आहारक ही रहा थ्रू आउट, तो कितने लंबे काल तक रह सकता है जीव? बहुत आतुर है बताने के लिए। अंगुल का असंख्यात भाग कहते, उसका प्रमाण कितना है? असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी चले जाए, एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। और यहाँ कितना ऐसे असंख्याता संख्यात बार, यानी वो कितना लंबे काल तक आहारक का आहारक ही रहता है। और ये तो छोटा काल हमने गिना, 2-6 सागर उसके सामने कुछ नहीं है। ख्याल में, जो ओग में हुआ था वो आहारक के रहते हुए हो सकता है, इसलिए ओग के समान कहा। यह सूत्र सुगम है। शासन सम्मादिच्छि सम्मामिच्छादिच्छिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च ओगम। आहारक सासादन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। ओग के समान क्या अंतर देखा था, याद है? एक समय से पल्ले का असंख्या था, नाना जीवन की अपेक्षा बात कर रहे हैं। यह सूत्र भी सुगम है। एक जीवन पड़ुच्च जहन न पलिदोवमस्य असंख्य यदि भागो अंतो मुहूर्तम, यह का हो करना मुहूर्तम। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात भाग और अंतर मुहूर्त है, यानी वो लगातार आहार का आहार ही रहा, क्योंकि ये तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर से भी असंख्यात संख्यात गुणा वाला काल है, और ये पल्य का असंख्यात भाग उसके सामने कुछ नहीं है। तो जो हमने ओग में देखा था वैसा ही अंतर, जघन्य अंतर तो वैसा ही घटित होगा। इस सूत्र का अर्थ ज्ञात है। उत्कृष्ट अंतर हमने ओग में कितना देखा था?
अर्ध पुटकल पर,
दोनों का कुछ कम अर्ध पुटकल पर होता है, वो यहाँ घटित होगा क्या? आहारक रखना है, तो आहारक में रहने का जो उत्कृष्ट काल है वो यहाँ लेना पड़ेगा। देखो, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर ऊपर पढ़ा क्या हमने?
नहीं पढ़ा।
उक्त से न अंगुलस्य असंख्येज यदि भागो असंख्येजा संख्येजाओ ओसप्पिणी उत्सप्पिणीओ। हाँ, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात, असंख्यता ने असंख्याता संख्यात, यानी वो आहारक रहने का उत्कृष्ट काल है। असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, जिसको कल्पकाल भी कहते हैं, इतना काल है। जैसे एक सासादन समय दृष्टि जीव सासादन गुणस्थान के काल में दो समय अवशिष्ट रहने पर मरण को प्राप्त हुआ, एक विग्रह करके द्वितीय समय में आहारक होकर। हम हमेशा जब यहाँ के आहारक अनाहारक की अपेक्षा नहीं थी तो भोग के पहले समय में सासादन वाला हुआ था और दूसरे समय में मिथ्यात्व में गया था। अभी यहाँ क्या करना, उसको आहारक बनाकर मिथ्यात्व में लाना है और आहारक की उत्कृष्ट स्थिति लेना है, इसलिए पहले अनाहारक में से उसको आहारक बनाया, इसलिए एक उसमें दो समय बाकी थे तो एक मोड़ लेकर द्वितीय समय में आहारक हुआ, अनाहारक था ना, हाँ दूसरे समय में आहारक हुआ, तीसरे समय में मिथ्यात्व में गया, तो सासादन का अंतर चालू हो गया, अंतर को प्राप्त हुआ। असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणिया और उत्सर्पिणियों तक परिभ्रमण कर आहार काल में अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाने पर, क्योंकि उसको आहार के रहते हुए साधन में लाना है, तो आहार की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके पहले अंतर्मूर्त, पहले उसने औक्षम समय को प्राप्त किया, उपशम समय को प्राप्त हुआ, पुनः आहार काल के एक समय मात्र अवशिष्ट रहने पर सासादन को जाकर विग्रह को प्राप्त हुआ, यानी फिर मोड़ लिया उसे, मोड़ वाला, क्योंकि वो आहारक में रखा ना, अभी तो अनाहारक हो रहा ही है उसको। यानी वो मरण के समय उसको सासादन, यानी उस भव में एक समय के लिए सासादन रहा और फिर मरकर वो विग्रह में गया, अनाहारक हो गया। सासादन रहा भले उसका, परंतु अनाहारक हो गया। इस प्रकार दो समयों से कम आहारक का उत्कृष्ट काल ही आहारक सासादन समय निष्ठी जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये ख्याल में है कैसे गिना? अभी तीसरे गुणस्थान की बात करेंगे। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके देवों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि अनाहारक से अभी उसको आहारक बनाया देवों में, इसलिए कि वो जल्दी उसको सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त हो जाए। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व में आया तो सम्यक मिथ्यात्व का अंतर शुरू हो गया। अंगुल के असंख्यात वे भाग काल प्रमाण परिभ्रमण कर, ये तो अंगुल का असंख्यात भाग काल कहो, उसी को अगर हम समयों में गिनना है, यानी उसका ऐसा लेना, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल प्रमाण परिभ्रमण करके, क्योंकि ऊपर वही बात बताइए। अंगुलस ने वहां अंगुलस असंख्य भाग इतना ही लिखा है, क्योंकि ये जो काल गिनने का तरीका है इसको कहेंगे तो क्षेत्र की अपेक्षा काल की गणना, और यहां हम काल में ही वो उसको डायरेक्ट बताते हैं, समयों में ही बताते हैं, तो उसको अंगुल का असंख्यात भाग कहो या असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कहो, बात एक ही है। फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पीछे सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व के साथ अंतर्मूत रहकर क्या कहना चाहते हैं? सम्यक्त्व या मिथ्यात्व का इन बीच में कभी सम्यक्त्व भी प्राप्त किया उसने, हो सकता है लास्ट में उसको सादी मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व उसने तीसरा प्राप्त किया, कोई सम्यक्त्व प्राप्त किया हुआ था उसमें से वो तीसरे में आ गया, कब किया क्या हमें उससे लेना देना है, उसे वहीं पर उसने आयु भी बांधी थी। इसलिए सम्यक अथवा मिथ्यात्व के साथ अंतर्मूर्त रहकर तीसरे में से अन्य गुणस्थान को प्राप्त होते ही मरण नहीं होगा, कोई चौथे में जाएगा कोई पहले में, वहां अंतर्मूर्त रहकर फिर मरण होगा और मरकर फिर विग्रह के साथ अन्यत्र जाएगा, क्योंकि उसको अनाहारक बनाना है अभी। इस प्रकार छह अंतर्मूर्तों से कम आहार काल ही आहार सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब असंजद सम्मादिट्ठि पौड़ी जाव अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक आहार जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं, निरंतर है। चौथा पांचवा छठा सातवां गुणस्थान तो हमेशा ही उसमें जीव पाए जाएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न अंतोमूर्तम। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी अन्य गुण स्थान को जाकर सबसे छोटे अंतर्मूर्त में वापस आया, उसको ले रहे हैं आप। क्योंकि विवक्षित गुणस्थान से अन्य गुणस्थान को जाकर और सर्व जघन्य काल से लौटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के जघन्य अंतर पाया जाता है। ये हमने जो जो कंडीशंस पहले देखी थी
दृष्ट मार्ग की,
तो मुख्य 28 सत्ता वाला है वगैरह वगैरह दृष्ट मार्गी है। अब ये 28 की सत्ता वाला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथे वाला है
28
की सत्ता वाला होगा, हो सकता है अनंतानुबंधी वाला भी होगा, विसर्जना वाला 24 की, उसकी बात नहीं करनी अपनी। पर बहुत बार उसने ऊपर नीचे किया ऐसा जीव लेना, सातवें के लिए उसको श्रेणी चढ़ के उतारना, बाकी तो छठे के लिए सातवें में जाकर वापस आएगा। उपकस्य न अंगुलस्य असंख्य यदि भागो असंख्य जाओ ओसपिनी उत्सपिनी। उक्त असंयतादि चार गुणस्थान वर्ती आहारक जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल है। ओग में उसको हम अर्धपुद्गल परावर्तन कुछ कम कहते हैं, यहाँ आहारक वाला जो काल है उसमें से कुछ कम कर देना। आहारक असंयत समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोहकर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्या दृष्टि जीव वो ध्रुव करना ध्रुव हो गया, विग्रह करके देवों में उत्पन्न हुआ। मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला ये हो गया देव में उत्पन्न हुआ। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। पीछे मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी उसको देवों में भेजकर वहां वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया, वो फिर मिथ्यात्व में गया तो अंतर चालू हो गया। और अंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण काल तक, यानी अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक, ऐसा भी कहेंगे हम, या असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। यानी वो तो हमें समझने के लिए, क्योंकि काल का डायरेक्ट यूनिट क्या है, अंगुल का असंख्यात भाग, और उसी को हम कन्वर्ट करते हैं तो असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। अंत में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पुनः उपशम सम्यक्त्व के काल में छह अवलिया अवशिष्ट रह जाने पर सासादन में जाकर विग्रह को प्राप्त हुआ, यानी वो तो जल्दी वहां से छूट गया, क्योंकि चौथा छूटने का काल देखा मैंने, कब छूटेगा, जल्दी छूटेगा। छह अवली पहले सासादन में जाता है तो चौथे जल्दी छूट गया वो, यानी बाद में जो अंतर्मूर्त हम कम करने वाले हैं वो छोटा हो जाता है, तो वहां एक समय बिताकर दूसरे समय में विग्रह करके चला गया। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम आहार काल ही आहारक असंयत समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है।
ये सम्मूर्छन तिर्यंच,
हाँ सम्मूर्छन तिर्यंच, हाँ
और देव उसमें जल्दी समय तो कौन प्राप्त कर सकता है,
इसी को लेना पड़ेगा, बार बार देवों को ही लिया है
तो
इससे ही घटित होता है। उनका प्रश्न है सम्मूर्छन तिर्यंचों में जल्दी समय तो होता है कि देवों में, क्या शायद उनके पर्याप्तियों का काल भी छोटा हो सकता है,
देवों का पर्याप्ति का काल। देव
नहीं देव में होना चाहिए कि उनको बार बार स्पेसिफिकली बताया है उसका अर्थ है आगम से ही सिद्ध होता है। यहाँ जो कथन किया है देवों में ले जाकर उसको सम्यक तो प्राप्त किया है उसी से सिद्ध होता है कि उन्हीं में जल्दी होता है। ये तो समूर्छन तीरंचो में नहीं उत्पन्न कराया
हमने आगे देखा था ना कि देवों का पर्याप्ति का काल होता है।
देवों का कम 176 पेज पर आहारक संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अब ये पांचवा गुणस्थान है तो अभी तो अभी आपको इसमें उत्पन्न कराना है तीरंज। मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छिमों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो विश्राम ले विशुद्ध हो वेदक सम्यक और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक परिभ्रमण कर अंत में प्रथमोपशम सम्यक और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पश्चात उपशम सम्यक के काल में 6 आवलिया अवशेष रहने पर सासाधन को जाकर विग्रह को प्राप्त हुआ। यानी वहाँ आहारक पड़ने से एक समय तक सासाधन रहा बाद में विग्रह कर दिया दूसरे समय में और फिर वहाँ जहाँ जाना वहाँ पहुँच गया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्तों से कम आहार काल ही आहारक संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर है। समझ में आ रही बात मनीषा बहन? तो बीच में मिथ्या तो में घूमेगा तो क्या त्रस में ही रहेगा क्या क्या होगा उसका क्या केंद्रीय में भी जाएगा?
जाएगा
क्यों जाएगा? त्रस की स्थिति कितनी है?
2000
सागर। और ये कितना बताया संख्याता संख्यात उत्सर पिण्य उत्सर बहुत जाएगा बहुत बार जाएगा है ना या जाएगा और उधर रहेगा और फिर
ज्यादा टाइम उधर रहेगा।
आगे बढ़ते आहारक प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अब वो पहली बार मनुष्यों में उत्पन्न कराना अभी छठे के लिए तो मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव विग्रह करके मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गर्भ को आदि ले 8 वर्षों से अप्रमत्त संयत और प्रमत्त संयत हो मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके अंत में प्रमत्त संयत हो गया। यानी वो सत्वे में जाकर लाया वो सब समझ लेना। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पश्चात मरण करके विग्रह को प्राप्त हुआ। यानी वो अप्रमत्त से प्रमत्त और फिर रहा अंतर्मूर्त बाद में मर गया छठे में आकर या कहीं पर भी छठे में आकर तो अंतर समाप्त हुआ था। यानी एक अंतर्मूर्त वहां रहकर फिर मर गया। इस प्रकार 3 अंतर्मूर्त और 8 वर्षों से कम आहार काल ही आहार प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। यहाँ पर भी उसमें क्यों नहीं ले गए सासाधन में?
ये ज्यादा हो जाएगा ना अंतर
वो भी
क्योंकि
तो
चौथे गुण मरण होने से चौथे गुण स्थान में चला जाएगा।
सासाधन में भी तो जा सकते हैं
कि अप्रमत्त और प्रमत्त का अंतर देखना है तो सासाधन में लाने की जरूरत नहीं ना
अंतर के लिए नहीं अंतर के पश्चात वाला काम लेने के लिए संहिता संहित को तो ले गए थे, उपशम समय तो काल में इच्छा अवलिए रहे, यानी वो अंतर्मुत क्या थोड़ा छोटा होगा, अंतर्मुत तो अंतर्मुत कहेंगे, तीन अंतर्मुत तो कहेंगे, इच्छा अवली से वो छोटा हो सकता है, जैसे पांचवे के लिए सासाधन मिलाकर मरण हुआ वैसा मुझे लगा था, इसमें होता है कि नहीं बताया नहीं उन्होंने, फिर भी एक बार छठा प्राप्त हुआ तो, यानी पहले बार सातवें में गया फिर छठा, छठा सातवा होता रहा, अभी कहीं पर भी मरण हो उससे क्या है, यथा योग्य छठे में आया और फिर वो मरण हो गया, ऐसा ऐसा फिर में मरण हो गया, कैसे भी लेना, जो लघु काल में मरण होगा ऐसा लेंगे, हाँ आगे बढ़ते।
ये प्रमथ से के अंत में मरण हुआ और विक्रम को प्राप्त हुआ तो ये तो मार्गणा बदल जाएगी ना, क्योंकि प्रमथ संयत ही था,
बदलना ही है ना, अनाहरक करना ही है, आहारक में उत्कृष्ट रखा तो उसको अनाहरक में जाना ही है, विग्रह करना ही है, इसीलिए उसको आहारक में उत्कृष्ट रखा, क्योंकि अनाहरक बनाएंगे अगर उसको
प्रमथ संयत, मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रमथ संयत था और मरण हो गया तो मरण के अंतिम समय तक तो वो आहारक था,
आहारक ही रखना है
नहीं पर अनाहर, अच्छा रुजु गति से जाएगा, यहाँ पे विग्रह को प्राप्त हुआ इसे लिखा है,
अरे कभी कभी की बात है, लास्ट में उसको विग्रह ही कराना है,
हाँ तो मार्ग बदल जाएगी ना,
बदलना ही है, तभी तो पहले उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल कब होगा, जब अन्य मार्गणा में चला गया, आहारक में उत्कृष्ट रखा ना उसको, अगर तब भी लास्ट भाव में भी अगर उसको आहारक रखते तो उसने आहारक का एक भाव कम गिनना, आपको समझ में नहीं आ रहा है,
समझ गए,
आप मुंडी तो हिला रहे,
नहीं हो गया समझ,
देखो हम पट्टी पर समझाते, मान लेते ना ये जीरो से लेकर 10 सेंटीमीटर इतना है मान लेते आहारक का काल,
अंगुल का संकेत,
तो इसके पहले भी विग्रह करके लाना है और पूरे यहाँ इतने 10 सेंटीमीटर वाला रखकर बाद में उसको फिर विग्रह कराना है, अगर बाद में विग्रह नहीं करते तो माँ आपने समझा उसने 9 पॉइंट पर उसका मरण करके उसको आहारक ही रखा, तो आगे वाला जो 1 सेंटीमीटर वाला काल है वो उसने आहारक पर ही बिताया।
मैंने क्यों पूछा कि हम लोग को प्रमथ संयत का आहारक में अंतर दिखता है, प्रमथ
हो गया ना अंतर, उसने प्राप्त करके ही अंतर हो गया,
प्राप्त किया और अंतर हो गया,
अंतर समाप्त हुआ, बाद में छठा सातवा हजारों बार किया है उसने, उसके लिए अंतर्मुट छोड़ा, बाद में मरण कराया और तब उसको अनाहरक नहीं बनाएंगे तो आहारक का उत्कृष्ट काल कहाँ
नहीं घटित होगा, बराबर
क्योंकि अंगुल का असंख्यात भाग परिभ्रमण करके उसने प्रमत्त संयत बनाए बनाए ने वो सातवें में जाकर छठे में आया है, अभी अप्रमत्त का देखेंगे, आहार अप्रमत्त संयत का भी अंतर इसी प्रकार है, विशेषता यह है कि अप्रमत्त संयत जीव प्रमत्त संयत होकर अंतर को प्राप्त हो अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, यानी पहली बार उसने अभी वैसे मनुष्य में उत्पन्न कराना है, 8 वर्ष के बाद वो सातवें में आया, सातवां छठवां बहुत बार किया, लास्ट में अंत में जब सातवें से छठे में आया तब अंतर हुआ, और अभी छठे से नीचे के गुणस्थानों में ले जाए, अभी फिर दोबारा सातवें में नहीं लाना, तब अंतर चालू हो गया, अंतिम भव में मरण के पहले फिर उसने सातवां गुणस्थान प्राप्त किया
सातवें से छठे में,
देखो अंतर को प्राप्त हो अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, अप्रमत्त संयत हो पुनः प्रमत्त संयत हुआ, अप्रमत्त प्राप्त करते ही अंतर तो मिल गया, बाद में छठा सातवा उसका अंतर्मूर्त होता रहेगा, पश्चात मरण करके विग्रह को प्राप्त हुआ, इस प्रकार 3 अंतर्मूर्तों से कम आहार काल ही आहार और प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। इसी प्रकार में आ गए ना। आहार काल ही लिया है, 8 वर्षों से कम लेना चाहिए। ओरिजिनल में रह गया इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। तिही अंतमुत्ते ही अंतमुहूर्ते ही अठवस्से ही यह ऊणव। तिही अंतमुहूर्ते ही यहाँ डालना प्राकृत में, पहली लाइन है ना 177 पेज पर, और उसको प्रमत्त जैसे करना।
क्या लिखते हैं?
देखो देखो पहले देख लो 176 पेज पर कैसे लिखा है उन्होंने प्रमत्त के बारे में। नीचे से तीसरी लाइन, अंतो मुहूर्ते ही अठवस्से ही य ऊणवो आहार कालो उपकसंतरम, वैसे यहाँ पर
अठवस्से ही,
हाँ अठवस्से ही य कि तिही अंतो मुहूर्ते ही अठवस्से ही य आहार कालो उत्संतन। तीन अंतर्मुहूर्त और 8 वर्षों से कम चाहिए। तीन अंतर्मुहूर्तों से कम लिखा है ना, वहाँ तीन अंतर्मुहूर्तों पहली लाइन में और 8 वर्षों से कम। आहार काली आहार कर्पम तो स्नेह का उत्कृष्ट अंतर है। नहीं नहीं नहीं
8 वर्षों से
तीन अंतर्मुहूर्त और 8 वर्षों से, अंतर्मुहूर्त के बाद 8 वर्षों से लिखना। चदुन्नम उवसामगानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नानाजीवम पडुच्च ओगभंगो। आहारक चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नानाजीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसका अर्थ पहले बहुत बार कहा जा चुका है। मनीषा बेन आप बताएंगे नाना जीवन की अपेक्षा कितना होगा अंतर, जगन्य कितना होगा, उत्कृष्ट कितना होगा? नहीं, चार उपशामकों का ब्रह्मा आप कहेंगे नाना जीव एक समय से लेकर वर्ष पृथक को, भूल गए ना? छपक शनि का अंतर 6 महीना देखते हैं ना, नाना जी उनकी अपेक्षा बात हो रही है। उपशामक चारों उपशामक, 8वें का 9वें का 10वें का 11वें का, 11वें के लिए दोबारा श्रेणी चढ़ाना है, बाकी चढ़ने और उतरने के बीच वाला अंतर 8, 9, 10 के लिए लेंगे। एक जीवम पड़ुच्छ जहन्ने न अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यह सूत्र भी सुगम है। हमने देखा ना चढ़ने वाले और उतरने वाले के बीच वाला जो अंतर है, वो ग्यारहवे के लिए दोबारा श्रेणी चढ़ानी है। उक्कस से न अंगुलस्य असंख्येजदि भागो असंख्येज्जा संख्येज्जा ओसप्पिनी उत्सप्पिनी हो। आहार चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके, ये विग्रह की बात, कंडीशन आवश्यक है, मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर सम्यक्त्व और अप्रमत्त भाव के साथ संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, यानी सातवें गुणस्थान में गया, पुनः अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके, क्योंकि डायरेक्ट उसको वेदक समय दृष्टि बनाए, फिर उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, दर्शन मोहनीय का उपशमन कर, उसके लिए 3 करण अलग और इसके अलग हो गए, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके, पश्चात अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांपरायिक वे समांपरायिक हुआ सांपरायिक और उपशांत कषाय होकर फिर भी गिरता हुआ सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण हुआ, पुनः नीचे उतरकर अंतर को प्राप्त हो। नीचे उतर कर वो फिर उसको मिथ्यात्व में भेज देना उसको, अंगुल के असंख्यात भाग काल प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में अपूर्वकरण उपशामक हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। जैसे हम वहां अर्धपुद्गल घटित करते हुए, ऐसे यहाँ पर उसके आहारक रखना है ना, बाद में उसको अनाहारक बना देंगे। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। तत्पश्चात निद्रा और प्रचला इन दोनों प्रकृतियों के बंध से विच्छिन्न होने पर मरकर विग्रह को प्राप्त हुआ। एक तो उसको विग्रह को प्राप्त कराना है। आप कहेंगे उसके बाद में मोक्ष क्यों नहीं भेजा, इसीलिए तो आहार का उत्कृष्ट काल घटित हुआ। विग्रह होने के पहले पहले वो आहारक रहा, यानी आहारक में उत्कृष्ट काल प्रमाण रहा, और अंत में जाके उसने 8वां गुणस्थान प्राप्त करता ही उसका अंतर समाप्त हुआ। निद्रा प्रजा का बंध विच्छित्त हो पर चढ़ने वाला मर सकता है, तो वहां पर उसका मरण हुआ। ये 8वें के लिए, 9वें के लिए एक समय में रहकर मर गया। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकों का भी अंतर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि आहार काल में अनिवृत्तिकरण उपशामक के 10, सूक्ष्म सांप्राय उपशामक के 9 और उपशांत कषाय उपशामक के 8 मुहूर्त और एक समय कम करना चाहिए। किसके लिए? हाँ हाँ, अनंतानुबंधिक विसर्जन करके फिर बीच में रुकेगा, विश्राम करेगा, वो सभी उसी में गिने उन्होंने, क्योंकि अनंतानुबंधी के विसर्जन किया तो 3 करण परिणाम हो गए, फिर अंतर्मूर्त तक उसका विश्राम होता है, बाद में 3 करण परिणाम करके द्वितीय क्षम करेगा। किसमें? फिर नीचे के गुणस्थानों में नहीं आता क्या? हाँ वही, यानी उसी में छठा सातवां भी होता रहेगा और अनंतानुबंधी की विसंयोजना वगैरह भी कार्य होगा। विसंयोजना के काल में तो उसकी विशुद्धि बढ़ रही है ना, छठे से सातवें में जाएगा, विश्राम में छठा सातवां होगा। क्योंकि सातवें में वो दर्शन मुनि का उपशम करके फिर छठा सातवां होता रहता है। अभी हम पढ़ रहे थे, ये हो गया ना। चदुन्नम खवानम ओघम। आहारक चारों क्षपकों का अंतर ओघ के समान है। यह सूत्र सुगम है। कितना है नाना जी उनकी अपेक्षा? एक समय से छह में। और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। सजोगी केवली ओगम। आहारक सहयोगी केवली का अंतर ओग के समान है। नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। अनाहारा कम्मय काये जोगी भंगो। अनाहारक जीवों का अंतर कार्मण काय योगियों के समान है। यानी उनके अनाहारक रहते हुए गुणस्थान पलटाना।
वह तो पलटेगा ही।
अनाहारकों के गुणस्थान कौन से? देखिए पहला, दूसरा, चौथा, तेरवा। तो देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ लिखा ना कार्मण काय योगियों के समान है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से। यानी उसमें और इसमें क्या समानता है ये बात बता रहे हैं। नाना जीव हमेशा ही पाए जाएंगे, कारमान का योग में मिथ्या दृष्टि हमेशा ही होगी। एक जीव जो मिथ्या दृष्टि है वो क्या चौथा गुणस्थान प्राप्त करके दो समय में वापस उसमें आता है? तो कहते उसमें विग्रह गति में ऐसा कुछ कार्य नहीं होता, केवल साधन वाला मिथ्या तो में जा सकता है, इतना ही हो सकता है, अन्य कुछ गुणस्थान परिवर्तन नहीं होता और वापस आने का तो सवाल ही नहीं। साधन समय दृष्टियों का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्लोपों का असंख्यात भाग अंतरों से। नाना जीवन की अपेक्षा वहां पर भी ये बात घट सकती, क्योंकि साधन में जाकर मरने वालों की अपेक्षा ये बात करेंगे, वहां भी उतना ही अंतर पड़ेगा। एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, क्योंकि साधन में रहेगा कारमान का योग में, तो उतने ही काल में फिर दोबारा साधन प्राप्त करना क्या, वो तो पल्ले का असंख्या का भाग लगता है और अनाहारकपणे रहने का काल तो उसका साधन वाले का तो दो समय होगा, सूक्ष्म जीवन के लिए तीन समय होते हैं। असंयत समय दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय, यानी जघन्य अंतर एक समय, यानी कोई समय के साथ कारमान का योग में आया, एक समय के लिए दूसरा कोई नहीं आया, फिर तीसरे समय में आया तो एक समय का अंतर पड़ा। और उत्कृष्ट मास पृथकत्व अंतरों के द्वारा, यानी समय के साथ मरकर आने वाले के मास पृथकत्व अंतर पड़ता है
कारमान का।
और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, ये मास पृथक और वर्ष पृथक तो कहीं हमने सुधारा था ना?
नहीं, इसमें यहाँ पे नहीं किया था।
नहीं, वही पहले कहीं वो मास पृथक और वर्ष पृथक में दो जगह दो बातें आई थी और उसको हमने मास पृथक ही गिना था। कौन से विषय में आया था? औदरिक मिश्र में आया था क्या? देखो जरा,
नहीं औदरिक मिश्र में नहीं होगा ना,
जरा औदरिक मिश्र की प्ररूपणा निकालो। 91 94 पर भी है। नाइन्टी पेज पर देखो, 164 नंबर का सूत्र है ना, वहाँ वासपुद्धत्तम लिखा था और उसके लिए दूसरी प्रति नीचे फुटनोट में मासपुद्धत्त लिखी थी
हमने, ऊपर मास किया है
और ऊपर मास, यानी दूसरा पाठ है इसलिए लिखा था। और उसके इन्हें वो औदारिक मिश्र में ही लिया था ना, क्योंकि वैकिरिक मिश्र भी 94 पर भी वही बात आई थी कारमान का योगियों में, मास पुदत्त लिखा था। मास पुदत्त लिखा है ना वहां हिंदी में भी और प्राकृत में भी। वैकरिक मिश्र के लिए कितना था?
बारह मूर्त लिया ना, नहीं सॉरी
मास पृथक वही है पेज नंबर 93। सेकंड लाइन मास पृथक अंतर होने से, इसीलिए वो वास्पुदत्त के लिए हमने मास पृथक को बनाया ना। मैंने पृथक तो मास यानी वो वास्पुदत्त गलती से पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर भी अनेक प्रतियों में मास पृथक है, अन्य दो प्रतियों में मास पृथक है, कारमान का योग में, वैकरिक मिश्र में, औदारिक मिश्र में, तीनों जगह मास पृथक लिखा है।
तभी हमने ऐसे भी सोचा था ना कि वर्षा पृथक और मास पृथक एक ही होता है।
नहीं वो तो कह सकते कहने के लिए, परंतु वो मास पृथक बराबर लगता है। मैंने अनाहारक में भी लिखा, कारमान का योग में भी देखा,
वैकरिक मिश्र में,
वैकरिक मिश्र,
औदारिक मिश्र
और औदारिक मिश्र, इनमें
मास पृथक
नाना जीवन की अपेक्षा असंयत का अंतर
मास पृथक
असंयत का अंतर। एक समय से मास पृथक उसके लिए पेज हमने देखे 90 पे कौन था वो औदारिक मिश्र था
नहीं वैकरिक मिश्र का देखा 92 में
90 पर औदारिक मिश्र था जो हमने करेक्शन किया था 92 पर कुछ नहीं था 93 पर वैकरिक मिश्र था और 94 पर कारमान का योगी था। अब ये अनाहरक की बात बता रहे हैं वो 179 पर है, उसको तो कर्मण कायोगी के समान क्या समानता है वो बताने के लिए बताया है। अभी आते हैं अपने पेज 179 पर।
मास पृथक का 3 से 9 महीना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता,
वर्ष से कम ही होना चाहिए।
हाँ वर्ष से कम।
देखो असंयत सम्मी दृष्टियों का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य एक समय उत्कृष्ट मास पृथकत्व अंतरों के द्वारा और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, इसका अर्थ समझते अनाहारक काल में उसका अंतर कैसा हो सकेगा? चौथे से अन्य गुण स्थान में जाकर फिर वापस आने का, अन्य में जाता ही नहीं उस काल में, क्या बोल रहे हैं?
नहीं गुण स्थान नहीं पलटेगा,
एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से संयोग केवलियों का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथक्त्व अंतर से, क्योंकि
किसने
ये जो समुद्रात करने वाले में इतना अंतर पड़ सकता है, तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से दोनों में समानता पाई जाती है। यानी वहां जो कथन है वही वहां यहाँ पर भी घटित होता है। अनाहारक जीवों में विशेषता प्रतिपादन करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, परंतु कर्मण का योग में जो अन्य गुणस्थान तो पहला दूसरा चौथा तेरवा तो हो गया, चौदहवें को तो अयोगी है इसलिए उतनी विशेषता होगी। नवरी विशेषा अजोगी केवली ओगम, किंतु विशेषता यह है अनाहारक अयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है। यानी अयोग केवली अनाहारक ही होते हैं,
नाना जीव के
तो नाना जीवों की अपेक्षा एक समय से छह महीने का अंतर पड़ेगा, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार आहार मार्गणा समाप्त हुई। इस प्रकार अंतरानुगम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। ये अनुयोग ही यहाँ समाप्त होता है। अभी तक कौन कौन से अनुयोग देखे अश्विन भाई?
सत्ता,
सत,
संख्या,
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन,
स्पर्शन,
काल
और अंतर,
अंतर। अब क्या रह गया?
भाव,
भाव और अल्पबोध। ये आठ होते हैं, इसके द्वारा वस्तुओं को जानना पड़ता है। सत्वा सूत्र में सूत्र है ना, इसीलिए सर्वसिद्धि के इतने दिए उदाहरण, काल अंतर उसमें सब बताए हैं, उसमें घटित करके नहीं बताए हुए पर लिखे हैं कितने क्या लगते हैं।
एक क्वेश्चन था,
हाँ,
संयत एक बार जीव हो गया,
एक बार जीव संयत हो गया,
हाँ, और उसका अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बाकी है, तो वो बीच में संयमी हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है।
नहीं, खाली मेरा खाली क्लैरिफिकेशन।
देखो हमने क्या देखा, अधिक से अधिक भावलिंगीपन कितने बार? 32 बार हो सकता है, 32 बार।
हाँ, 32 बार।
उसके बाद वो तो नियम से 32वें बार हुआ तो नियम से मुक्त जाएगा ही जाएगा।
हाँ।
ये
हाँ।
चौथे गुणस्थान में कितने बार आ सकता है? पल्ले के असंख्यातवें भाग बार। पांचवें गुणस्थान में भी पल्ले के असंख्यातवें भाग बार आ सकता है। अनंतानुबंधी की विषय योजना भी इतने बार हो सकती है, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा अनंत काल है। कोई हो सकता है कि एक बार भी समय तो नहीं प्राप्त किया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए चौथे पांचवें छठे सातवें का अंतर इतना उत्कृष्ट देखा हमने कुछ कम करके, परंतु ऐसे कितने हमने ये भी देखा था बीच में पंचेंद्रियों में, हमने देखा था कि उसमें अल्प बहुत्व में उन्होंने ऐसी बात की थी, वो संख्या की प्रकरण में आई थी ना, कि जो जीव अभव्य और भव्य उनके बारे में वहाँ अल्पभूत बताया था, यानी जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो कितने हैं और सादि मिथ्या दृष्टि जो है वो कितने है, उसकी संख्या थी। यानी ये इसमें इतने ऐसे ही जीव ज़्यादा आए समय को प्राप्त करेंगे जिन्होंने पहले कभी एक बार करके छोड़ा, और ऐसे असंख्यात जीव एक इंद्रिय में से त्रस पर्याय में आते हैं और उनमें से जीव समय को प्राप्त करते हैं। एक इंद्रिय में ऐसे कितने पड़े हैं? तो कितने अनंत
अनंत पड़े हैं। तो ये आपने क्या बताया, असंख्यात जीव?
देखो, एक इंद्रियों में से जो अनंत राशि पड़ी है,
हाँ,
जिन्होंने कभी समय को प्राप्त भी किया था, उनमें से एक इंद्रिय में से पंचेंद्रिय में कितने जीव आते? पंचेंद्रिय में होते ही असंख्यात जीव, तो उसमें से असंख्यात ऐसे भी जीव आते हैं कि जो कभी किसी ने समय को प्राप्त किया था, और उनमें से ही कितने जीव समय को प्राप्त करते हैं? कोई ऐसे जीव पर जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, और कितने ऐसे जीव हो गए कोई जब कभी उसने भले बहुत पहले समय को भी प्राप्त किया था, ऐसे जीवों की भी अधिकता है उसमें। क्योंकि अनंत काल है ना, उसमें कितने बार वो समय को प्राप्त भी करेंगे फिर मिथ्यात्व में भी जाएंगे, ये हो सकता है। क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन ये बहुत लंबा काल है,
अनंत है,
और उसमें त्रस में भी आएंगे, एक इंद्रिय में भी जाएंगे, कितनी बार जाएंगे। अब कोई प्रश्न है क्या नया? अभी भावानुगम चालू करेंगे। अब भावानुगम के लिए यहाँ मंगलाचरण नया होगा। हाँ, कल से भी करेंगे, अभी भी पहले पढ़ेंगे। अवगय अशुद्ध भावे उवगय कम्मख उच्च उभावे पणमिय सौवर हंते भावण योगम परुवेमो। यानी यहाँ भी प्रथम खंड का जीवस्थान का भावानुगम यहाँ शुरू हो जा रहा है। 183 पेज पर है ना ये। इसका अर्थ पहले देखते हैं। अवगय अशुद्ध भावे, यानी अभी अपगत हो गए अशुद्ध भाव, यानी निकल गए, रहित हुए उससे, अशुद्ध भावों से रहित। उवगय कम्मख उच्च उभावे, यानी कर्मक्षय से प्राप्त हुए हैं चार अनंत भाव जिनको। अभी ऊपर जो शब्द है ना
चौ भाव है,
तो इकट्ठा करना है पहली लाइन में ब्रह्मा, पहली लाइन ना अवगय अशुद्ध भावे, उसके बाद उवगय कम्म खऊ चौ भावे, यानी वो इकट्ठा करना, एक लाइन पूरी चाहिए, इकट्ठा करना, डबल छ और ओ को जोड़ देना, एक लाइन पूरी अच्छी करे इसमें, वहां नहीं वहां नहीं, लास्ट में उभावे लिखा है ना, उभावे
हाँ।
और उसके पहले डबल छ है
हाँ।
वो पूरे एक लाइन होनी चाहिए, क्योंकि चौ भावे ऐसा शब्द है, एक शब्द करो उसका। यानी कर्मक्षय हो गया है और चार भाव प्रकट हुए उनके, यानी कर्मक्षय से प्राप्त हुए हैं चार अनंत भाव जिनको। अवगत होते हैं निकल गए, उपगए उपगए ने उनको प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हुए हैं? चार भाव। क्यों? कम्मखौ कर्मक्षय से चार अनंत जो हम चतुष्टय कहते हैं वो चार भाव प्राप्त हुए। यहाँ भावों में बता रहे हैं, अशुद्ध भाव नष्ट हो गए कर्मों का क्षय होने से, चार भाव प्राप्त हुए, चार अनंत भाव। ऐसे पणमीय सौवर हंते, ऐसे सर्व अरिहंतों को प्रणाम करके भावन योगम परुवेम, भावान योग द्वार का प्ररूपण करते हैं। भाव अनुगम यहाँ घाती कर्म नाश हुए तो चार अनंत प्रकट हुए ना, कौन से चार? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चार भाव। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ज्ञानावरण का क्षय हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, क्षय ज्ञान भी कहते हैं। दर्शनावरण सारे नष्ट हो गए, अनंत दर्शन हुआ। मोहनीय सभी नष्ट हुए, चारित्र मोहनीय भी और दर्शन मोहनीय तो पहले ही गया था, तो अनंत सुख प्राप्त हुआ और अनंत वीर अंतराय गया था।
अंतराय।
अब यह हम सूत्र नंबर एक पढ़ेंगे इसमें से। भावानुगमेन दुविहो निर्देशो ओघेन आदेशेन य। भावानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, निर्देश यानी कथन, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ यानी गुणस्थानों में इन जनरल करेंगे और आदेश यानी उसके मार्गणाओं में अलग अलग प्ररूपण करेंगे। देखो देखो आपका ऐसा प्रश्न है, भाव यानी क्या लेना? आप कहेंगे भाव कौन से होते, जीव के भाव कौन से है, तत्वार सूत्र में सूत्र भी है, शुभ
रशुभ
नाम स्थापना, आप क्या कहते हैं?
पांच भाव बताए,
पांच भाव है ना जीव के,
औदयिक, सायिक, श्रमिक, सायिक,
औपशमिक शावशमिक
साई वेदक
फिर औदयिक कौन सा है क्षायिक और
पारिणामिक
औदयिक भाव क्या सम्यक है क्या शावशमिक भाव सारे सम्यक के नहीं है मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है वो भी शावशमिक भाव है तो कौन कौन से हुए औदयिक
हाँ
औदयिक हुए फिर औदयिक तो देखो पारिणामिक भाव तो स्वभाव भाव है सभी जीवों को है सिद्धों को भी और जीव संसारियों को एक बात हुई तो ये हो गया पारिणामिक स्वभाव भाव और बाकी चार है वो तो पर्याय में घटित करते हैं और वो उनके नाम कर्मों की तरफ से लेते हैं क्योंकि वहाँ कर्मों का निमित्त है अभाव रूप या सद्भाव रूप अभाव रूप में तो क्षायिक भाव सारे कर्मों के अभाव रूप है क्षय हो चुके हैं तो कर्मों की तरफ उसको उन भावों को कहेंगे क्षायिक इसलिए चार भावों को नैमित्तिक भाव ही कहते हैं क्योंकि वहां कर्मों का निमित्त है और उस निमित्त की ओर से नाम दिया है नाम निमित्त की तरफ से दिया है ख्याल में ही ना बस है तो जीव के अपने परिणाम कर्मों के कारण कुछ नहीं हुआ है नाम उसकी तरफ से पड़ा है तो ये कौन कौन से हैं तो कर्मों के नाम से हुए एक का उदय कर्मों का उदय वहां निमित्त रूप से है और यहाँ जीव का अपना परिणाम है यह औदयिक कहेंगे शौवशमिक वहां कर्म में शौवशम चलता है शौवशम यानी वो तो वो किस पर घटित होगा कौन से कर्मों पर घटित होता है
दर्शन अरे दर्शन और विचार के संबंध में शौवशमिक भाव सॉरी
शौवशमिक भाव कौन से कर्मों पर घटित होता है
मौनीय कर्म नहीं मौनीय दर्शन
आठ आठ कर्म में
नहीं 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 गाति कर्म
गाति कर्म में किस पर
गाति कर्म में
कौन से गाति कर्म पर देश घाती पर सर्व घाती का तो उदय होता है तो पूरा ही घात होता है तो उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं है चौक्षम का हाँ तो देश घाती प्रकृतियों में यह बात घटित होती है प्रकृतियां जो है घाती कर्म जो है उसमें कुछ प्रकृति सर्वघाती है कुछ प्रकृतियां देशघाती है सर्वघाती और देशघाती का अर्थ क्या है तो उसके अनुभाग जो है ऐसा है सर्वघाती का जो स्पर्धकों में हम गिनते हैं तो उसके स्पर्धक ऐसे है कि जो सर्वघात करते हैं यानी उसका उदय हो तो प्रतिपक्ष का पूरा घात होता है जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है उसका उदय चलता है तब तक केवल ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है और सभी ज्ञानावरण चले जाते हैं तो जो ज्ञान प्रकट होता है उसको हम क्षायिक ज्ञान कहेंगे केवल ज्ञान कहेंगे समझ में यहां तक बात अब अन्य जो मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मनपरे ज्ञानावरण ये प्रकृतियां देशघाती है तो देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक कैसे होते हैं
सर्वघाती देशघाती
दोनों होते हैं यही विशेषता है प्रकृति देशघाती होने पर उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं यानी अनुभाग पाए जाते हैं अब देशघाती प्रकृति में भी सर्वघाती स्पर्धक का उदय हो जाए तो क्या होगा प्रतिपक्ष का पूरा नाश होगा ऐसी कोई प्रकृति मालूम है देशघाती है और सर्वघाती का उदय चलता है
अवधि और
अवधि ज्ञानावरण मन परे ज्ञानावरण हम आपको तो उसका सर्वघाती का उदय तो हमें वो ज्ञान प्रकट नहीं है और जिन मुनियों को मन परे ज्ञान है केवल ज्ञान है उनका क्या होता होगा उनके देशघाती का उदय सर्वघाती सत्ता में पड़े रहते उदय में नहीं आते तो इसको कहेंगे क्षोभशम हमारा आपका क्या है मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभशम है यानी उसमें भी सर्वघाती प्रकृति स्पर्धक होते हैं परंतु उनका उदय कभी नहीं होता ये उसका भी उदय हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा परंतु बनते तो है सर्वघाती सर्वघाती देशघाती दोनों बंधे तो उदय में क्यों नहीं आ रहे बंधे तो सत्ता में तो पड़े हैं दूसरे निषेक से लेकर ऊपर तक पड़े हैं जब उदय का समय आता है वो सर्वघाती वो देशघाती टर्न होकर उदय आते हैं तो देश सर्वघाती अपने रूप से उदय में नहीं आते उदय तो हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे उदयाभावी क्षय निकल जा रहे इसलिए क्षय परंतु अपने रूप से उदय नहीं हो रहा, परमाणु उदय में आ रहे हैं परंतु वो सर्वघाती रूप से नहीं उदय में आते, उन्हीं का देशघाती होकर उदय में आते। प्रकृति वही रहती है, वो देशघाती माइल्ड होकर उदय में आई तो वो पूरा घात करने को समर्थ नहीं है। इसलिए क्षोभशम की परिभाषा क्या है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी उसका नहीं हो रहा। अब कहेंगे ऊपर के अगर ऐसा उदीर्ण होकर उदय में आवे तो भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपक्ष, अपनी जगह सर्वघाती रूप से अपनी जगह, जो नीचे आते उदीर्ण होकर वो देशघाती होकर आए, फिर उदय किसका होगा? देशघाती स्पर्धकों का उदय। ऐसी जहां तीन की कंडीशन होती है वहां उसको कहेंगे क्षोभशम। तो ऐसा क्षोभशम किस में होगा? तो देशघाती प्रकृतियों में ही होगा। अभी कितना आसान है डिराइव करना, देखो घाती का ये सातावेदनीय कौन सी है देशघाती के सर्वघाती है?
उसमें है ही नहीं,
वो तो अघाती है, वेदनी अघाती कर्म है,
चार घाती कर्मों में
हम चार घाती कर्मों में देशघाती सर्वघाती भेद हो गए। तो ज्ञानावरण में भी देशघाती सर्वघाती है, तो ज्ञानावरण में भी क्षोभशम घटित होगा। तो जैसे क्षोभशम भाव कितने, तो हमको याद करना पड़ता है, इतना याद करना, चार घाती कर्म है ना, तो चार कर्मों पर ज्ञानावरण के दर्शनावरण के मोहनीय के अंतराय के क्षोभशम भाव घटित करो। तो उसको हमने देशघाती सर्वघाती वाली बात कहाँ होती, तो केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती है, तो केवल ज्ञान को छोड़, बाकी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान चार सुज्ञान ये क्षोभशम रूप है। और कौन से हैं? तीन कुज्ञान जिसको क्षोभशमिक अज्ञान कहेंगे, कुमति कुश्रुत और कुअवधि विभंग ज्ञान, यानी ये चार और तीन सात तो यहीं पर हो गए
केवल ज्ञान सर्वगत।
अब दर्शनावरण में, दर्शनावरण में जीव के दर्शन कौन कौन से हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल दर्शन तो क्षायिक भाव है, बाकी तीन क्षौक्षणिक है, यानी वो तीन ज्ञान ये तीन अज्ञान चार ज्ञान ये तीन अदर्शन, तीन दर्शन, दर्शन अदर्शन दर्शन। फिर अभी मोहनी के, मोहनी में चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी दो है। अब दर्शन मोहनी में कौन सा क्षौक्षमिक भाव घटित होगा? क्षौक्षमिक सम्यक्त्व। और चारित्र मोहनी में संयमा संयम, असंयम नहीं, संयमा संयम और सराग चारित्र जिसको कहेंगे, जिसको हम क्षौक्षमिक चारित्र कहेंगे। अभी दो तीन दिन से वही हिम्मत नगर से रजनी भाई का फोन आ रहा है कि गुरुदेव ने 32वीं गाथा में ये घटित किया, वहाँ उपशम भाव नहीं कह रहे औषमिक, इसमें 32वीं गाथा में वो 11वें गुणस्थान में उसको कहा है ना, हाँ, तो उसमें गुरुदेव ने कहा यहाँ राग क्षौक्षमिक राग है, राग का क्षौक्षमिक भाव है, राग का क्षौक्षमिक भाव है, एक नहीं दो दो बार कहा है कह रहे, उसका अर्थ कैसा लेना, अर्थ कैसा लेना आप बताएंगे?
राग का
क्षौक्षमिक भाव है, हाँ, आठ नौ दसवें में लेना है,
ग्यारहवें में नहीं लेना है,
आठ नौ दसवें, क्योंकि उदय है तो कैसा है? संज्वलन का उदय है, संज्वलन का उदय है तो देशघाती का है और सर्वघाती पड़ा है सत्ता में, तो मतलब हाँ उसको कर, तो वितराग भाव को कैसे करेंगे? क्षौक्षमिक भाव कहेंगे, मतलब वितराग में कहाँ क्षौक्षमिक घटित करेंगे? वितराग भाव जो है श्रेणी वाला या कहीं का भी होगा, वितराग भाव में कहाँ वो कर्मों का क्षोभशम की अपेक्षा है? वो तो जीव का भाव है, वो तो जीव का स्वभाव भाव है, जितना राग है उस पर क्षोभशम घटित होगा। ख्याल में आती है बात? जो वितराग जो है वो चारित्र गुण तो एक ही है ना, राग और वितराग तो हम कह रहे हैं, जितना राग है उसी की अपेक्षा चारित्र का नाम है, जिसे मिथ्या चारित्र है और बाद में सम्यक चारित्र हो गया, तो सम्यक चारित्र में जो हम अलग अलग बात, ये सम्यक नाम वितरागता के कारण है, परंतु हम जो भाव घटित कर रहे हैं कर्मों का निमित्त किसमें है? तो जो राग है उसमें है, जो वितरागता है उसमें थोड़े निमित्त लगता है।
तो ग्यारहवें गुण
तो वितरागता, फिर वो भी क्षौक्षमिक वितरागता है क्योंकि, मतलब ऐसा घोटाला क्यों करे आप? हाँ, कल आया था ना फोन
गुणस्थान में औषधिक चरित्र
लेना ग्यारहवें में ले लो, वहाँ उन्होंने श्रेणी चढ़ते समय की बात की। तो गुरुदेव का कितना सूक्ष्म अभ्यास होगा कि नहीं होगा सबका था, मगर धवला पढ़ने वालों को भी इतने इतना कितना सूक्ष्मता होती है उनको भी। आपका क्षौक्षमिक भाव कैसे घटित करना, कैसे घटित करना है, इस तरह से घटित करना। तो हमने मोहनी के देखे थे दर्शन, मोहनी के क्षौक्षमिक सम्यक्त्व, सीमा संयम और सराक्षारित्र। सराक्षारित्र जो कहते हैं वहां जो राग भाव है उसकी अपेक्षा उसको क्षौक्षम कहेंगे। अभी अंतराय के पांच कितने हुए, पहले सात हुए फिर तीन लिए दस हो गए, मोहनी के तीन तेरह और ये पांच सौक्षमिक अठारह भाव होते हैं ना। कितने आसान है ना, आसान नहीं तो उनको रटना पड़ता है कितने क्या है क्या है। चार घाती कर्म है और उसमें भी जो जो जीवों की देशघाती प्रकृतियां हैं यानी उसमें आसान है ना। ज्ञानावरण में घटित करो तो मिथ्या दृष्टि के तो तीन अज्ञान है कुज्ञान है, उसको क्षौक्षमिक अज्ञान कहा। और जो मतिशुद्ध अवधि मनोपर्याय है उसको क्षौक्षमिक ज्ञान कहा। दर्शनावरण के हमने घटित किए क्योंकि उसमें तो केवल दर्शनावरण सर्वघाती है और पांचों निद्रा सर्वघाती है। बचे कितने, तीन ही रह गए ना, छह तो चले गए उसमें से तीन ही प्रकृतियां रही, चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। उसको क्षौक्षम होता है जीव को यहाँ चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन, ये तीनों ही क्षौक्षमिक भाव। उसमें ना मिथ्या समय ऐसा कुछ नहीं लगता, दर्शन में कुछ नहीं लगता, वो ज्ञान में लगता है। उसके बाद मोहनी की बात देखी, मोहनी में दर्शन मोहनी मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। अब यहाँ मिथ्यात्व के स्पर्धक सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप से हुए मिथ्यात्व के, तो वो आखिर प्रकृति देशघाती हुई उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं है। तो वहां परिभाषा ऐसी होगी सम्यक प्रकृति का तो उदय होगा, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व अपने रूप से उदय में नहीं है, उदयाभावी क्षय करेंगे सदवस्था रूप उपशम करेंगे। तो क्षौक्षमिक सम्यक तो हुआ। संयमा संयम जो है पांचों गुणस्थान उसमें भी क्षौक्षमिक भाव क्यों कहते हैं, तो प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय वहाँ घटित करो क्षौक्षमिक भाव।
वहाँ पे भी सम्यक का तो सम्यक प्रकृति का उदय है,
क्षौक्षमिक सम्यक की बात नहीं कर रहे।
अच्छा, वो हो गया चारित्र मौनी का उदय।
तो पांचवे गुणस्थान में संयमा संयम को क्षौक्षमिक भाव क्यों कहा,
प्रत्याख्यान ग्रहण की अपेक्षा चारित्र मौनी की अपेक्षा होगा,
बोलो बताओ।
वहाँ पे प्रत्याख्यान का देशघाती उदय है,
प्रत्याख्यान और प्रकृति तो सर्वघाती है,
नहीं पर वहाँ पे संज्वलन और प्रत्याख्यान का देशघाती रूप से उदय हो रहा है ना।
संज्वलन का नहीं,
नहीं प्रत्याख्यान आवरण का देशघाती रूप से।
वहाँ क्या है कि देशघाती करण नाम का एक ये होता है, मोहनीय का देशघाती पना वहाँ बन जाता है, पांचों गुणस्थान से होता है। वहाँ देशघातीकरण वाली जो
सभी देश
प्रोसेस है वो तो श्रेणी में होती है, वहाँ तो अन्य भी कर्मों पर हो जाती है, परंतु यहाँ उनका देशघातीपना बन जाता है। किसका, प्रत्याख्यान आवरण का।
संज्वलन का गुणस्थान में हमने सभी प्रकृति का देशघाती हो जाता है तो संज्वलन को नहीं ले सकते,
संज्वलन को लो पर कितना देशघाती होगा, वो सकल संयम वाला नहीं होगा।
हाँ, पर संयम संयम रूप से होगा
तो संयमा से मैंने प्रत्याख्यान का जितना मंद होता है उतने ही अपेक्षा उतना ही उसका रहेगा, उससे ज्यादा मंद नहीं होगा। यानी अभी प्रत्याख्यान में ही सर्वघाती देशघाती घटक लब्धिसार में वो श्रेणी में होता है। देशघाती करण नाम की जो प्रोसेस है वो लब्धिसार में पड़ी थी, श्रेणी में होती है। परंतु वहां ये प्रश्न पूछा था तो मोहनी में क्यों नहीं नाम, उसको मोहनी का क्यों नहीं लिया था, अन्य को क्यों लिया था, वहाँ सारे वो अन्य प्रकृतियों में वो लिया था जो देशघाती प्रकृतियाँ होती है ना, ये सब मति ज्ञान श्रुति ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण वो सब चक्षु दर्शन वगैरह सब लिया उसमें, जो देशघाती प्रकृतियाँ हैं जिसमें सर्वघाती भी स्पर्धक होते हैं उनको देशघातीकरण किया था वहाँ पर श्रेणी में। तो वहाँ मोहनीय को क्यों नहीं किया ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो कहते उनका तो पांचवें में हो गया है ऐसा माल लिखा था। इसलिए वहां मोहिनी का नाम नहीं लिया श्रेणी में, मोहिनी का देशगाती में नाम नहीं लिया, बाकी सभी का लिया, ये पांचों अंतराय का वगैरह सबको लिया, यहाँ पांचवे से ही होता है।
पांचवे गुणस्थान सबने देखा, सब देशगाती करण चालू हो जाता है, पर वहाँ पे सर्वगाती स्पर्धक पड़े रहते हैं
चालू होता है ना उसको देशगाती
से समझ रहा था कि वहाँ सर्वगति स्पर्धक का सभी नष्ट हो जाते
हैं। कैसे नष्ट हो गए, पूरा देशगातीकरण शुरू हुआ है उसमें। हाँ। अगर पूरे ही नष्ट हो जाए तो सौक्षम भाव कैसे गठित करेंगे। प्रत्यक्ष नाम है सर्वगाती प्रकृति, उदय में देशगाती रूप से आ रही है, संज्वलन तो है ही देशगाती प्रकृति, उसमें सर्वगाती देशगाती बनता है।
तो क्या ये द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने को कहते हैं, उनको ये सूक्ष्मता ख्याल में आती है, क्योंकि कर्णानुयोग के अभ्यास के बिना ये सूक्ष्मता कभी ख्याल में नहीं,
ये सूक्ष्मता नहीं आएगी, परंतु मैं जुदा हूँ, ये राग मुझे भिन्न है, ये तो अरे ये स्थूल है, सम्यक तो प्राप्त करना बहुत स्थूल बात है, वो तो पहले करो ये कह रहे हैं, और उसके बाद सम्यक तो प्राप्त करने के बाद क्या करोगे, यही तो पढ़ना है और क्या करना है, अन्यत्र रुचि रही नहीं किसकी, समझ में आती है ना, मुख्य बात वो है समय को प्राप्त करो, इसलिए उसका उपदेश सामान्य जीवों को मुख्यता से दिया जाता है। सूक्ष्मता तो बाद में जितना पढ़ेंगे उतना वो विषय और दृढ़ता के लिए वो है कि समय तो बना रहे उसमें से छूट ना पाए, तो उसमें दृढ़ता के लिए क्या करेंगे, तो इसी का अवलंबन लेंगे, कल इसकी बात शुरू करेंगे। अगर जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तकनम सदा।